ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 21। इक्कीस बाईस हो सकता है क्योंकि कल 23 होगा, 22 में तो कुछ है नहीं। श्लोक संख्या 21।
एतत् भ्राम्यति मे बुद्धि दीपार्चीरिव वायुना ब्रूहि एतदद्भुततमम् भगवान ही अत्र कारणम्।
शब्दार्थ एतत् इसे लेकर, भ्राम्यति डगमगा रही है, मैं मेरी बुद्धि ही बुद्धि दीपर्ची दीप के लो इव सदृश वायुना वायु से ब्रीही कृपा करके बोले एतत् यह अद्भुततमम सर्वाधिक अद्भुत भगवान भगवान समस्त ज्ञान से युक्त ही निश्चय ही अत्र यहां कारणम कारण। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यह विषय निसंदेह अत्यंत अद्भुत है, मेरी बुद्धि उसी तरह डगमगा रही है जिस तरह बहती हुई वायु से दीपक की लो विचलित हो जाती है। हे नारद मुनि, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपा करके मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बतलाइए। तात्पर्य, शास्त्रों का आदेश है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छित। जब मनुष्य जीवन की कठिन समस्याओं से चकरा जाए तो उनको हल करने के लिए उसे नारद अथवा परंपरागत किसी प्रतिनिधि तुल्य गुरु के पास जाना चाहिए। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने नारद से विनती की कि वे ऐसी अद्भुत घटना का कारण बतलाएं। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्री जुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सहगणम रघुनाथम नितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितंस नमों विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सभी को बहुत आश्चर्य लगता होगा कि ये क्या हो गया, ये व्यक्ति तो दो दिन पहले हमको हाल खराब करके गया था, फिर कैसे आ गया। अरे आज ही सुबह तो मंगला आरती में कोई दूसरे का नाम अनाउंस हुआ था, उसके बदले ये कैसे आके बैठ गया, है ना। नहीं आश्चर्य अद्भुत तमाम आश्चर्य, खाली आश्चर्य नहीं। अरे हम दो घंटा पहले सुने को, उसको भी देखे थे मंगला आरती में था प्रेजेंट, ऐसा नहीं कि नहीं था। अरे यहां देखते हैं दूसरा कोई बैठा है, ये कैसे, क्या करें, ऐसे ऐसे अद्भुत घटना होता ही है, आश्चर्य घटना है ना। तो आश्चर्य के कारण जानने के लिए सबका मन में इच्छा भी होता होगा ना, ये कैसे है। तो इस प्रकार के अब 7:15 हमको फोन आया राधा श्याम चंद्र प्रभु का कि मेरा तबीयत खराब है, अब क्या करें, आप हमारा काम चला दीजिए, इतने जल्दी और कोई पटेंगे नहीं अब क्या करें, हम स्टेपनी है, स्टेपनी जानते ना, हंसने स्टेपनी समझते ना क्या होता है, गाड़ी में जो 6 चक्का वाली गाड़ी होता है उसके और एक 7वां चक्का रहता है, 4 चक्का गाड़ी में एक 5वां चक्का रहता है, उनका स्थान पीछे होता है अपने जगह पर, लेकिन कोई भी 4 से या 6 से कोई भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं कुछ गड़बड़ होने से ये काम में आ जाए, है ना। नहीं ऐसे नहीं कि केवल पीछे आगे नहीं आ सकता, केवल बाएं दाएं नहीं आ सकता, ऐसा नहीं, कहीं भी फिट हो जाए, स्टेपनी चक्का का ही काम होता है तो हम स्टेपनी है ना। नहीं मेन काम के लिए नहीं, लाइक काम चलाने के लिए है ना। नहीं कहीं जरूरतमंद पड़ा तो काम चलाने के लिए थोड़ी देर के लिए काम चला लेंगे। तो ये आश्चर्य के कारण है। तो यहां भागवत में प्रसंग चल रहा है, जैसे मैं परसों भी आपको बताया था कि श्री युधिष्ठिर महाराज ने, केवल युधिष्ठिर महाराज ने, उनके साथ में जितने ऋषि मुनि उपस्थित थे सभी का आंख निकला हुआ है, इतने आश्चर्य हैं, ये हो कैसे सकता है, कैसे हुआ, क्या हो गया। और इस श्लोक में कहते हैं कि अद्भुत तमम, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, अद्भुत अद्भुततर अद्भुत तम बोलते हैं, उसके ऊपर होने इतने अद्भुत है ये बात, इतने आश्चर्य है कि हम सोचा नहीं जा सकता। उदाहरण देते हैं क्या, कि जैसे वायु के द्वारा कोई दीप के लो डगमगा रहा है, कब बुझ जाएगी टिके के पता नहीं, इस प्रकार अस्थिर मेरा बुद्धि हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मेरा बुद्धि तो ऐसे डगमगा रहा है, कोई स्थिर नहीं कर पा रहे, क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ, उसका पीछे रहस्य है क्या, उसको निर्णय करने में बिल्कुल मेरा बुद्धि बेकार हो चुका है, अस्थिर हो चुका है, बिल्कुल दीप जैसे हवा के झोंक पर ऐसे डगमगा, ऐसे ही मेरी बुद्धि अस्थिर हो रहा है, कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा है, इसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसे नहीं कि युधिष्ठिर महाराज को, हमारा तुम देखा आज ही सुबह सुबह क्लास में हम लोग का सबका हो रहा है, ये कैसे हो गया। तो प्राय हमारे इस जीवन में, दैनंदिन जीवन में अनेक बार ऐसे हुआ करता है, चलो उसके बारे में जानकारी उससे पता कर लेते हैं, लेकिन ये घटना कोई ऐसी दैनंदिन जीवन की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात, ये भगवत संबंधी बात है। और ऐसे भगवान, वो भगवान प्रेजेंट है इधर, अब किसी के बारे में हम बात कहें, वो व्यक्ति नहीं है, किसके बारे में कोई बात चले तो आपस में वाद विवाद हो जाए, अरे तुम जानते कि मैं नहीं जानता हूं, अरे वो व्यक्ति स्वयं इधर हो, वो क्या कहेगा, अरे तुम भी दोनों क्यों झगड़ते, मैं खड़ा हूं ना इधर, मुझे पता है हमारा एड्रेस क्या है, मेरा घर क्या है, कैसे क्या है, तुम क्यों आपस में क्यों लड़ते हैं। अरे भगवान प्रेजेंट थे, ये एक ही घटना है ऐसा। प्राय भागवत में ये एक घटना मुझे लगता है यही एक ही घटना है जहां पर भगवान के बारे में चर्चा हो रहा है, भगवान के सामने भगवान मौजूद है, भगवान खुद मौजूद है घटनास्थल पर, और उन्हीं के लेकर के युक्ति, उन्हीं के लेकर रहस्य, उन्हीं के लेकर के आपस में नारद जी बोल रहे हैं और युधिष्ठिर आदि समस्त ऋषि मुनि सुन रहे हैं। और किसके बारे में? जिसके बारे में वो खुद खड़े हैं, खुद श्रेष्ठ पूजा लेने के लिए खड़े हैं, उन्हीं के सामने चल रहा है बात। बाकी सारे देखो भगवान के बारे में, किसी भक्तों के बारे में चरित्र उनका आलोचना किया जा रहा है, वो नहीं है, लेकिन यहां तो खुद ही हो। तो अब कहते हैं कि ये जो शिशुपाल और उनका भाई थे दंतवक्र, विशेष करके शिशुपाल जो है, ये तो उनके जब से बोली बोल पाया तब से गालियां देता है, निंदा करता है। बेन आदि हम देखे थे थोड़ा बहुत निंदा किए, नरकगामी हुए, ये तो नॉन स्टॉप निंदा कर रहा है, नॉन स्टॉप पानी पी पी करके। और परिणाम हुआ क्या? यही आश्चर्य है कि भगवत निंदा और भगवत भक्त निंदा, इसको महत निंदा कहा जाता है। महापुरुषों की निंदा भी जब महत निंदा में आता है तो भगवान की निंदा तो फिर क्या कहो, महामहत निंदा है। महत निंदा का घोर परिणाम शास्त्र में बताया गया, घोर परिणाम महत निंदा, इमीडिएट रिजल्ट। 3 साल के अंदर, 3 महीना के अंदर, 3 पक्ष के अंदर, 3 दिन के अंदर, 3 क्षण के अंदर भी हो सकता है। महत निंदा इतने गुरुतर अपराध है, गुरुतर पाप है, उसका फल तो तुरंत हो जाएगा। और ये तो साक्षात भगवत निंदा है, उससे बढ़कर कोई पाप हो ही नहीं सकता। और उनको अंगुली दिखा दिखा कर सामने ही बोल रहा है, अरे किसी के बारे में कुछ बोल दो और उनका सामने पब्लिकली इसे करके बोलो तो भारी अपमान है ना, इस प्रकार से बोल रहा है, इतने भारी अपमान। और उसके परिणाम उसको जो होना चाहिए, शास्त्र में जो बताया गया कि ऐसे महत निंदा का, ऐसे कुट महत निंदा, जघन्य महत निंदा का परिणाम बड़े भयानक, जिसके द्वारा निंदा होता है, जो अंग के द्वारा अपराध होता है, इसे अंग गलित होकर के नष्ट हो जाना चाहिए और स्वयं व्यक्ति महा नरक में जाना चाहिए, जघन्य नरक जाना चाहिए। ये दोनों तो हुआ ही नहीं। और ये हुआ, अरे जो बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी मानी को भी बड़े मुश्किल से हो पाता है। भगवत सायुज्य, भगवान में प्रवेश कर जाना, ये तो बहुत ही रेयर, बहुत दुर्लभ की बात। और सबके सामने दिन दोपहर में भगवान में प्रवेश कर गया उनकी आत्मा, यही सबसे बड़ी आस अद्भुत तमम। ये कैसे हो सकता? होना था कुछ और, अरे कुछ उसमें डोज कम होता चल जाता, अरे बिल्कुल उल्टा। जो बड़े बड़े भक्त हैं, कभी निंदा नहीं, अपराध नहीं करते, बच करके साधन भजन करते हैं, उनके जो गति होना चाहिए वो गति हो गया, वो गति हो गया उनका, जिनको बिल्कुल यहां जाना चाहिए था। एक छोटी मोटी आश्चर्य की बात नहीं, इसलिए आश्चर्य से बढ़कर आश्चर्यतर, उससे बढ़कर के आश्चर्यतम, इति अद्भुततमम ब्रूहि एतत्। आप बताइए उसके कारण, क्योंकि आई एम कंफ्यूज्ड, मैं टोटली, मेरा बुद्धि भ्रमित हो रहा है। भ्रमित होने का ये उदाहरण बताते हैं कि जैसे दीप का लो डगमगा हो रहा है, डगमगा रहा है वायु के झोंक से, इस प्रकार मुझे भ्रमित हो रहा है कि कैसे क्या हो सकता है, कोई स्थिर नहीं कर पा रहा हूं। तो इसी अवस्था में शरण में जाना चाहिए। इस अवस्था में जब किसी को कोई जानकार प्राप्त होना आवश्यकता है, जानना चाहता हूं कि क्या है, तो आजकल जो पाठ्यक्रम है, जो विद्या के सब उपाय है, उसमें साधारण जानते हैं कि उसको बोलते हैं आरोह पंथा। आप शास्त्र में 2 प्रकार के विद्या प्राप्त करने के लिए, जानकार प्राप्त करने के लिए उपाय बताए, कि अवरोह पंथा, एक आरोह पंथा, जानते ना इस दोनों के बारे में, सुने होंगे, इस उपनिषद में वर्णन आता है इसके बारे में। वैदिक ज्ञान को जानने के लिए 2 उपाय है, अवरोह पंथा और उसको कुछ आजकल निगमिक आगमनी कैसे कुछ बोलते हैं पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। आरोह अवरोह तो समझ में आता है, आरोह मतलब चढ़ना, अवरोह मतलब उतरना। तो आजकल के आधुनिक जो ज्ञान का तरीका है वो सब आरोह पंथा के ऊपर। आप तैयार करो, तैयार करो, खूब खूब बल बुद्धि लगाओ, चेष्टा करो और प्रयास करो और चेष्टा करो, चेष्टा और तैयारी की यही एनकरेज करते हैं। डू योरसेल्फ, और लेबर लगाओ और काम करो, अपने प्रयास और बल बुद्धि के बुद्धे पर उसके बल पर अब जानने के प्रयास करो। इसे बोलते आरोह पंथा। मैं पेड़ में चढ़ूंगा, चढ़ चढ़ कर जाऊंगा, पर गिर जाता हूं, हाथ पकड़ूंगा, पैर लगाऊंगा, शरीर छील जाए, शरीर कुछ भी हो जाए, लेकिन धीरे धीरे चढ़ के ऊपर जाऊंगा, आरोहण करूंगा, चढ़ने का पंथा। दूसरा बोलते हैं कि भाई किस लिए चढ़ रहा है, ना वो पका हुआ फल लाने के लिए, इसलिए मैं बिल्कुल छिल छाल करके चढ़ रहा हूं, आरोहण करता हूं बड़े मुश्किल। बड़े भैया तुम यही खड़े रहो, अब रहो इधर से क्यों है पेड़ में, गिर जाके बिल्कुल मिलेगा। ये अवरोह पंथा, जो ऊपर हैं उनको अगर प्रार्थना करो वो पेड़ तोड़ कर गिरा दें आपके हाथ से सीधा आ जाए तो कितना बढ़िया होगा, आपको कुछ नहीं करना पड़े, केवल है ना। नहीं जैसे किसी को, आप लोग को गुलाब जामुन अच्छा खाने में पसंद आता है ना, रसगुल्ला ना जलेबी क्या खाने में पसंद आता है, हाँ सब अच्छा लगता है ना, कोई एक चुनना पड़ेगा, सब नहीं दे सकते, तीन आइटम नहीं एक आइटम मिलेगा। चलो मान लो गुलाब जामुन है, इस्कन में गुलाब जामुन थोड़ा फेमस है ना, नहीं इस्कन के इतिहास में गुलाब जामुन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। तो गरम गरम बिल्कुल लाल और ब्लैक मिला हुआ कलर, ब्राउनिश कलर का गुलाब जामुन बिल्कुल स्मेल के साथ आ रहा है, खोआ फोआ ओरिजिनल डाल करके बनाया, तो उसको खाने के लिए मन कर रहा है। हम जिसने खाने चाहते हैं किसी को बनाना तो आता ही नहीं, जानते नहीं कैसे बना इंग्रेडिएंट से, केवल खा तो लेते हैं बढ़िया जगह इतने स्वादिष्ट लगता है, मन कर रहा है खाने के लिए, कहीं से डोनेशन पैसा मिल गया, मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने के लिए, तो क्या करें, तो बाजार में जाएंगे इंग्रेडिएंट्स पर किताब देखेंगे गूगल ढूंढ में क्या क्या लगता है उसका कैसे बनता है, फिर ये सामान खरीद के लावेंगे, फिर उसको बनाएंगे, बनाना तो आता ही नहीं, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसमें क्या गुलाब जामुन के बदले और कौन जामुन बन जाए क्या पता। कि हमको तो बनाना आता ही नहीं, केवल सामान ले आने से थोड़ी ना हो जाएगा, आज कैसे जलना है, किसके मात्रा कैसे देना है, किसी कुछ तो पता नहीं, और हम परीक्षा निरीक्षा करेंगे और गुलाब जामुन के वजह से और क्या जामुन बनेगा उसका नाम नहीं बताएंगे हमने। कभी कभी हमारे भक्त लोग बनाते हैं और इतने वज्र बाटोड़ी बन जाते, वज्र समझ में, दांत तोड़ गुलाब जामुन। नरम नरम गरम गरम क्या है। अब हम बनाए तो ही बने और क्या करें, और लाल पीला के चक्कर में और कलर भी कुछ आ जाए, स्वाद भी कुछ आ जाए, और उसका बिल्कुल सब बढ़ंगा हो जाए, इसे पैसा खर्च किए, टाइम एंड एनर्जी शक्ति और पैसा सब लगाए, मेहनत लगाए, इतनी बर्तन फर्तन ये सब किए गैस पर जला, लेकिन वो जो निकला किसी को बोलने के लिए शर्म आता है, क्या बोलूं ऐसे बना। तो इससे ये इतने सारे खर्चा प्रयास है सब टाइम इसको ना करके अब डेली गुलाब जामुन बनता राज्य होंगे जहां बनता है, वो डिबोटी की जाकर के थोड़ा मस्का लगाओ, भाई साहब मैं आपको ये कर दूं एक दूं, तो ये एक आध दे दो, तो बोलेगा ठीक है परसों आला ना मेरा बाड़ी है मैं दे दूंगा, तो दो बिल्कुल सद्य तुलसी पत्ता डाला हुआ राधा सामसन अफरिंग का गुलाब जामुन दे दिया, कुछ नहीं करना पड़ा, ना दुकान से खरीदने गए, ना सामान लाए, ना बनाने का चक्कर, ना कोई जो कुछ नहीं है, अब बिल्कुल स्वादिष्ट ए ग्रेड का हाई क्लास गुलाब जामुन मिल गया। ये क्या करना पड़ा, जिनका गुलाब जामुन जो हमेशा जहां बनता जो करता उनको जाकर के थोड़ा सेवा कर लिया, छोटा सेवा सम्मान से ही तो बनता है, कम पड़ता है और क्या, तो उनको जाकर थोड़ा सेवा किया, उनको जिज्ञासा किया, प्रार्थना किया, तो उनकी कृपा से बनी बनाई चीज मिल गया। तो कौन सा आपको अच्छा पंथा लगता है, सेकंड वाला ना, हाँ बुद्धि जिसके पास वही काम करेगा, नहीं तो कहे क्योंकि जाएगा ये दूसरा काम करके तो हो ही नहीं सकता। तो यही बात है, जब हमारे किसी चीज को जानने के लिए बुद्धि भ्रमित हो डिसाइड नहीं कर पाए क्या करें कैसे जाने, तो कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिनके पास इनका सही जानकारी हो, उनके शरण में जाना चाहिए, उनकी थोड़ा सेवा करना चाहिए कि प्रभु जी भाई साहब थोड़ा बताए मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं, क्या हो सकता है उसके रहस्य का, जो सचमुच जानते हैं तत्वज्ञ हैं वो बता सकते हैं। तत्व ज्ञान जानने का विधि भगवान भी कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं ना जानने का विधि क्या है, तद विधि, यही विधि है प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा, ये तीन करो तो वो तत्व ज्ञान दे देंगे, तत्वदर्शी ज्ञान देंगे। ठीक इसी प्रकार ये जो महान अद्भुततम कारण जिसमें सारे पजल्ड कंफ्यूज्ड है उसके बारे में जानने के लिए वो आरोह पंथा अपनाए नहीं, अपने बुद्धि कसर लगाए हम जाने कैसे हो सकता है, बोरे ये टाइम खराब करके ये सब काम खराब करना नहीं है, जो सचमुच कोई योग्य व्यक्ति के शरण में जाना चाहिए तब जान सकते। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज आजकल जैसे पढ़ाई पंथे वाले, पढ़ाई वाले नहीं स्टूडेंट वाले नहीं थे, आरोह पंथा वो अवरोह पंथा, वो सीधा देखे इनका इस निराकरण में डाउट का कौन कर सकता, इनमें कौन है, देखे थे स्वयं नारद जी थे, बोले ही भगवान हे ऋषि, तो उनको भगवान करके श्लोक में आया, भगवान शब्द आया ना नारद जी के, नहीं नारद जी भगवान थोड़ी नहीं, भगवान तो सर्वनियंता सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान होते हैं, नारद जी तो ऐसे नहीं है, लेकिन व्यास सुख नारद आदि को भी भगवान करके शास्त्र में बहुत जगह में बोला जाता है, यहां भी युधिष्ठिर महाराज उनको भगवान करके स्वीकार किए, बोले भगवान आप बताइए। प्रभुपाद जी ने इस भगवान के शब्द के अर्थ में लिखते हैं कि सब जो जानता है तत्वज्ञ, तत्वज्ञानी। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, इसमें बताया गया उत्पत्ति प्रलयश्चैव भूतानाम अगतिर गति वृत्ति विद्याम अविद्यांच स भगवान इति वाच्यते। बोलते हैं उनको ही भगवान कहा जा सकता है अगर इनको ये छह चीज के ज्ञान हो, जिनको ये छह विषय के बारे में जानकारी हो उनको भी भगवान कहा जा सकता है, यद्यपि वो सर्वनियंता सर्वशक्तिमान भगवान नहीं है लेकिन फिर भी उनको भगवान रूप में वाच्यते तो उनको कहा जा सकता है। वो छह चीज क्या है उसमें बताया गया है उत्पत्ति प्रलय शैव, पहले दो बात है जो उत्पत्ति के बारे में प्रलय के बारे में, इस जगत उत्पत्ति हुआ कैसे, जगत सृष्टि हुआ कैसे, इस तत्व को जो जानता है व्हाट इज द ओरिजिन, जगत के उत्पत्ति के कारण जो जानता है और प्रलय कैसे होता है मिटता कैसे उसको जानता है, उत्पत्ति प्रलय शैव भूतानम अगतिर गतिम, इस समस्त जगत के जागतिक प्राणी जितने हैं सभी अपने अपने कर्म के अनुसार कैसे आते हैं और कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं उनका गति क्या होता है, अगत गति और मतलब कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, इनके बारे में जिसको पता है भूतान अगतिर गति और व्यक्ति विद्याम अविद्यांच, ये पांचवा और छठा विद्या और विद्या इसको कहा जाता है जो इस संसार के भवरोग जो है, हम संसार में जो इस संसार रोग में जो ग्रसित हैं, जो पड़े हैं, जन्म मृत्यु को चक्र है सरकते हुए संसार में, जो महा संसार व्याधि का मूल कारण क्या है, वही है विद्या, वही अविद्या एक्चुअली अविद्यांश, अविद्या के कारण ही ये अविद्या क्या है ना, भवरोग का असली कारण क्या है अविद्या, उसको जो जानता है किसी कारण से हमारा ये दशा हुआ है, यह है अविद्या। विद्या क्या है ना, किसी कारण से किस उपाय से यहां से निकल सकते हैं, इस भवरोग से उद्धार पाने का एक नंबर उपाय क्या है, यह विद्या। तो हो गया ना उत्पत्ति प्रलय गति और अगति, विद्या और अविद्या, ये छह तत्व को जो जानता है इस तत्वज्ञ व्यक्ति को भी भगवान कहा जा सकता है। तो व्यास सुक नारद आदि आदि कहीं ऐसे ही विशेष व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं जिनको इसके बारे में पता है, और ये बात युधिष्ठिर महाराज को पता है, कि हम तो नहीं जानते, लेकिन वो तो है तत्वज्ञ, वो तो जानते हैं उसके कारण पक्का, कि ऐसा अद्भुत का पीछे क्या कारण है वो जानते हैं, वो बता सकते हैं, तो इसलिए उनके शरण में जाए। यही है उपाय। हम प्रत्येक व्यक्ति, अब देखो किसी प्रकार रोग से सब पीड़ित हैं, ऐसे रोग का निदान किसको पता है, जो अच्छे डॉक्टर इसके स्पेशलिस्ट है उसके पास जाने से काम निकल बन जाएगा, और उनके पास न जा करके इधर उधर भागने से कोई काम थोड़ी ना बनेगा। तो इसी प्रकार ज्येष्ठ महाराज इतने चतुर थे, इतने उनको समझ था कि नारद जी जैसे तत्वज्ञ भगवत पुरुष भक्त पुरुष के शरण में जाए तो अवश्य ही मेरा इस संशय को पूर्ण रूप से निराकरण कर देंगे, ये उनको अच्छी तरह से पता था। इसलिए इधर उधर टाइम खराब ना करके आपने प्रयास बल चेष्टा बल बुद्धि लगा कर ये सब टाइम खराब ना कर कुछ करके ना करके सीधा अप्रोच टू भगवान नारद, यही है बुद्धि की परिचय। क्यों? क्योंकि भगवत तत्व तो है यह, आपने कुछ बुद्धि चल नहीं सकता, इसलिए भगवान को जानकारी कराने के लिए वेद ही एकमात्र प्रमाण है, और कोई उपाय से जानने से अवंग मानस गोचर काय मन न बुद्धि जहां जाकर के वापस फिर टकरा कर आएगा पता नहीं चलता है क्या, भगवान उसके परे हैं। अध्यक्ष है इंद्रिय जनित जो जानकारी जो कैपेसिटी है इंद्रियों में उससे परे हैं, हो नहीं सकता, और उसके बारे में आप रिसर्च करना बैठेंगे ये हिड़बकपना नहीं है, है ना। नहीं जैसे किसी को पूछा जाए भाई साहब आपके पिताजी के नाम बताओ, बच्चा सब नहीं जानते पिताजी के बारे में, जानने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, मां से पूछना चाहिए। अगर कोई मां बताए कि बेटा ये तेरे पिता है कि पापा, आप बोलेंगे क्यों, वो क्यों, वो क्यों नहीं है, अब क्या किया जाए। कोई लोग होते हैं इसे पूछ भी सकते हैं, बोले मैया ये क्यों पापा है वो क्यों नहीं है। अब लो मां के बात पर तुम्हारा डाउट है, संशय होता है और युक्ति करेंगे उनके साथ, अब क्या आपके पास उपाय है जान के लिए, मां के बात को नहीं मानना चाहते। मैं बोला ठीक है तू फिर अपना बुद्धि लगा लो, डिसाइड कर लो कौन पापा है, मुझे क्यों पूछे, मैं जो बताती हूं अगर नहीं मानते हो तो फिर आप क्या उपाय है आपके पास जानने का। ना मैं डीएनए टेस्ट करूंगा, डीएनए टेस्ट करो, डीएनए समझते ना, तब जमाना था आज का। अब करे तुम्हारा आयु के अंदर अगर सारे लोगों को करते जाओ करते जाओ डिसाइड कर पाओगे, तो ही है टाइम खराब करने का। तो इसीलिए सही उपाय है मां को पूछो, मां उसके युक्ति नहीं करना चाहिए, यू हैव टू एक्सेप्ट, वहां युक्ति का स्थान ही नहीं है, यहां ग्रहण करना ही पड़ेगा। हाँ प्रभुपाद जी ने इस बात को कहते हैं और दो तीन उदाहरण देते हैं, बोलते हैं जैसे मल है, मल अपवित्र है सब जानते हैं, मल को स्पर्श करने से शुचि होना चाहिए, नहाना चाहिए, सब करना चाहिए, ना नहीं, लेकिन गोबर एक मल तो है, और गोबर को लीप दो तो यहां देवता बैठ जाए, इतनी शुद्धिकरण है। कोई युक्ति करे अरे ये भी तो मल है, ये पशु के मल है, और लेकिन आदमी के मल से बहुत महान है ना नहीं, तो उसकी युक्ति नहीं चलेगा, वो मानना पड़ेगा। क्यों? ये वेदवाणी है, वेद वाक्य है, यहां कोई रिसर्च करके पता नहीं, वो रिसर्च करके देखते हैं कि सारे एंटीबैक्टीरिया सब जो है अच्छे अच्छे गुण गोबर में पाया जाता है। अब वो तो अभी कर करके देखते हैं, लेकिन तो पहले से बोल दिए वेद वाक्य है, इसलिए वेद वाक्य अपौरुषेय है, स्वयं प्रमाण, क्योंकि शब्द प्रमाण है, वेद से कहा गया, उसमें कोई युक्ति तर्क नहीं, उसको ग्रहण कर लो, अपना बुद्धि लग नहीं सकता, जहां बुद्धि और प्रयास पहुंच नहीं सकता उसमें टाइम क्यों खराब करें, है ना नहीं। लिखा गया कि हड्डी जो है वो पवित्र वस्तु है ना नहीं, अस्थि, अस्थि के छूने से नाना पड़ते, अस्थि पवित्र है, ये जो शंख बजाते हैं डली वो क्या है, अस्थि तो है, अरे भगवान के दर्शन होने से पहले उसको टच करते हैं, उनके वाद्य सुनते हैं, मंगल वाद्य बोलते हैं उसको, पवित्र है, उसमें युक्ति नहीं कर सकते, अरे हड्डी है कैसे, नहीं हड्डी है, सारे हड्डी अपवित्र है लेकिन ये नहीं है, ये कैसे ना, ये वेद वाक्य है, उसमें अवयुक्ति तर्क नहीं चलेगा। चमड़ी है, अस्पृश्य है, लेकिन ये मृदंग बजाते हैं वो क्या है, है चमड़ी है, लेकिन भगवान के सामने, तो ये सब कोई ऐसी चीज है जिसमें हम युक्ति नहीं चला सकते, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार भगवत तत्व के बारे में हमारा कोई बुद्धि तर्क चल नहीं सकता, तो जो इस तत्व को जानते हैं उनको बिना आर्गुमेंट स्वीकार करना पड़ेगा। ये तत्व ज्ञान उन्हें तो उपाय की यही है कि उनके पास पहुंचना पड़े और उनको अप्रोच करें। तत्वज्ञानी पुरुषों को पहुंच करके उनको पूछना, उनके सेवा करना, उनके प्रणिपात करना, बस इससे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज यहां नारद जी उपस्थित थे, वो भगवान को तो पूछ सकते थे, अरे जिसके बारे में डाउट हो रहा है वो व्यक्ति तो स्वयं खड़ा है, उनको पूछ सकते थे, नहीं उनसे जानने के लिए भगवान ही खोद कहते मेरे बारे में जानने के लिए मेरे व्यक्ति को पूछना पड़ेगा, मुझे मत पूछो, भगवान ही स्वयं बताते हैं, गुरु के शरण में जाओ। भगवान को जानने के लिए क्या उपाय है? गुरु के शरण में जाओ। गुरु को जानने के लिए क्या करना उपाय? भगवान के शरण में जाओ ना। गुरु को जानने के लिए भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। पहले आप हम लोग जैसे नालायक है, हमारा उपाय क्या, हम किसको जानते हैं, किसके शरण में जाएं? हे प्रभु, हे भगवान, भगवान को पुकारो, भगवान कृपा करके आपने एक प्रतिनिधि भेज देंगे, ओ हे गुरु। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो उसके द्वारा फिर भगवान के बारे में जानेंगे, यही है उपाय, है ना। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखते हैं, इसलिए कोई भी विज्ञान जानने के लिए गुरु के पास आना चाहिए, यही उपाय है। बिना जानकारी तत्व ज्ञानी गुरु के शरण में जाए बिना अब जान कैसे सकते हैं? और फिर ये भगवत ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, यहां तो सवाल ही नहीं उठता, यहां तो आपका बुद्धि बुद्धि को रिसर्च काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करे, यहां तो केवल तत्वदर्शी व्यक्ति जो जानते हैं उन्हीं के शरण में जाना होगा और उनके सेवा करना होगा, उनको प्रणाम करके सरेंडर करना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा प्रेम से, वो बताएं तब जाकर जान पाएंगे। दिस इज द ओनली वे, एक ही उपाय है जानने का, और कोई उपाय नहीं है। अब गुरु कैसे जान ले, किसी के शरण में जाए? गुरु तत्व के बारे में शास्त्र में विविध बात बताया गया है। गुरु शरण में जाना चाहिए तो शास्त्र ठोक करके बताते हैं जाना ही चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं बनेगा। और गुरु के योग्यता के बारे में बहुत बताया गया, और उसके बारे में हम अगर जाएंगे हमारा बुद्धि भी काम नहीं करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्त लोग ने पूछे, ये तो साक्षात भगवान थे, उनको पूछे गुरु के बारे में, भगवान भगवान है, इस कलयुग में आए थे उन्होंने, और जानते हैं कलयुग के दिमाग की क्या स्टैंडर्ड है, ये अगर ऐसे गुरु समित पाणी ऐसे सोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ बोले हम चुपा सोच समझेंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, शब्द नहीं समझेंगे और क्या समझेंगे, तो कुछ समझ नहीं। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सिंपल शॉर्टकट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिए, इतने सरल उत्तर दिए गुरु के बारे में, गुरु पहचान के बारे में, जबरदस्त बात कह दी, बोले इधर उधर कोई किधर नहीं जाना, किवा शूद्र किवा विप्र किवा न्यासी, जय कृष्ण तत्ववेत्ता, दैट्स इट, आधे सेंटेंस में बोल दिए। गुरु कौन है? जय कृष्ण तत्ववेत्ता, समझिए यहां क्या भगवान ने कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन असली बात क्या है, ये नहीं कहते हैं कि जो भगवान को अनुभव कर चुके हैं, भगवत अनुभवी, भगवत धाम गए हैं, ऐसा बात कहें क्या, नहीं, क्या कहते हैं, वेत्ता, मतलब जो जानता है, जो भगवान के बारे में जानता है, केवल अभी पाया नहीं है, समझा कर का नहीं है कि अनुभव किया कि गया, ये बात नहीं कह रहे हैं, केवल जो जानता है, जिनका पास भगवान का जानकारी है, जय कृष्ण तत्व वेत्ता, जो व्यक्ति जो कृष्ण के बारे में जानता है वही गुरु हो सकता है, जय कृष्ण तत्व वेत्ता, सही गुरु, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड सट सट का आंसर है ना, नहीं ये भगवान कह दी, बोले इधर उधर काहे को टाइम खराब कर रहे हो, कोई जाति पाति स्टैंडर्ड वर्ण आश्रम कोई ढूंढना नहीं है, केवल देखो जो कृष्ण के बारे में किसको पता है, जिनको कृष्ण के बारे में पता है बस वही गुरु हो सकता है, उनके शरण में जाओ वो तुम्हारे ये ज्ञान दूर कर सकते हैं। और ये जो आश्चर्य की अद्भुततमम बात युधिष्ठिर महाराज जो बाकी सारे उपस्थित व्यक्ति के मन में आया, वो कहते हैं कि आश्चर्य इसलिए है क्योंकि इस केस में जो होना था, हम कई देखे हैं शास्त्र में सुने देखे समझे, जो होना था ये हो नहीं रहा, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भागवत में एक प्रसंग आता है चतुर्थ स्कंद में, सती प्रसंग, जहां सती ने आत्मदाह की, आप सब जानते हैं ना, सती अपने आग में प्रवेश जल गई। इसी प्रसंग में सती ने एक जोरदार बात कही है, ये सती की मुख्य वाणी है, स्वयं सती देवी ने कही, भरी सभा में उनके पापा जी बैठे थे, बड़े बड़े ब्राह्मण सब बैठे थे, एक नंबर हाई क्लास ब्राह्मण सब बैठे थे, जागिंग ब्राह्मण, उन भरी यज्ञ सभा में सती ने ये उक्ति कही अपने पापा के सामने। वो तो उनको इनवाइट नहीं किए थे, उनके पापा ने इतनी बड़ी भारी फेस्टिवल यज्ञ किए अपने घर में, उनको फोन भी नहीं किए, मेल मैसेज व्हाट्सएप मैसेज भी कर दिए होते, कुछ नहीं किए। सती की तो पता नहीं थी, सती अपने पति के साथ थी, पति का कोई फ्लैट थोड़ी ना था, वो पेड़ के नीचे रहते हैं, वो कोई फोन नहीं था उनके पास, नेट कनेक्शन हिमालय में पता नहीं क्या होगा, जो होगा पता नहीं, जो भी हो। तो अब शिव जी तो सर्वज्ञ हैं, उनको पता था लेकिन वो बता नहीं रहे थे। यज्ञ इतनी बड़ा हो रहा था, देवलोक से जख्य रखे से गंधर्व लोक से भी लोग जा रहे थे, अपने अपने परिवार अपने पत्नियों के साथ सब धज करके फ्लाइट में जा रहे थे सब, और आ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वो जो कैलाश जहां सती जी के फ्लैट है, मतलब उनके पेड़ के है, पेड़ के नीचे रहते हैं, उसी साइड में जा रहा था फ्लाइट, वो बातचीत कर रहे थे, सुनाई पड़ रहा था सती जी को, अरे क्या खूबसूरत अरेंजमेंट है, क्या प्रसाद, क्या रहने का व्यवस्था, क्या गिफ्ट मिला यार, हाँ क्या व्यवस्था है, कैसा। उसको सुन करके सती बोला, क्या इतने बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, इतने गिफ्ट, इतने सम्मान, इतनी बड़ाई ज्ञान कर रहे हैं, क्या है, किसको पूछा रोक करके, भैया मैया थोड़ा बोलो। वो देखी बोले, अरे तुम इधर हो सती, अरे तुम्हारे यहां तो है, तुम्हारे पापा के यहां इतने बड़े फेस्टिवल है यार, हम तो वहीं से आ रहे, आप किसे इधर हो, आप तो उसके सबसे नियर एंड डियर छोटी बेटी हो, सबसे उनके प्रिय बेटी हो, सबसे छोटी बेटी हो, आपके घर में इतने बड़े उत्सव, आप इधर, आपको पता ही नहीं, अब आप होते तो कैसे लगता, पापा के ऊपर कितना गुस्सा होता है ना, क्या हो गया पापा को, इतने बड़े उत्सव कर रहा है, सारे दुनिया के लोग जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं। लेकिन आए तो देखे क्या नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तो पोस्टल डिपार्टमेंट भी था नहीं, तो क्या करे, पापा को क्या गाली दे, अगर फोन में किए होंगे मैसेज भी दिए होंगे तो आए नहीं, पहुंच नहीं रहे हिमालय के ऊपर, क्या पता चला। चलो अभी तो पता तो चल ही गया कि हमारा घर में पापा के हमारा फेस्टिवल, तो जाकर के पति जी से पूछे कि ऐसे ऐसे आप सुने, ऐसे ऐसे है, अब चलना चाहिए। तो पति साहब बोले, हम पता है, पता है, बताया नहीं मुझे, चलते नहीं, ना पता है इसलिए बताने, क्योंकि जाना ही नहीं, अरे जाना ही नहीं, किसे जाना नहीं, जाना नहीं, अब धमाद है यार, जाना चाहिए फेस्टिवल हमारा, नहीं नहीं जाना नहीं। जब एक घटना हुआ था, शिव जी ने नहीं बताए थे, तो बोले कि गड़बड़ कुछ है, जान करके हमको नहीं बुलाया गया, वो जहां जान करके बुलाया नहीं गया, यहां अगर जाओगे ना तो अपमान होना पड़ेगा, तो इसलिए नहीं जाना उचित है, इसलिए मैं नहीं गया, आपको बुला भी नहीं है, नहीं जाना उचित है। लेकिन वो तो रही स्त्री रही, अब अपने बुद्धि के अनुसार उन्होंने अब बुद्धि लगाई, बोले कैसे नहीं जाना चाहिए, क्या हो गया उनका, क्या हो गया करके, क्यों क्या हो गया, कैसे नहीं है। और शिव जी ने फिर बता दिया, बोले देखो मैं बता देता हूँ, आप चितिन जी कहते हैं ऐसे ऐसी घटना, एक बार हम गए थे कोई उत्सव में, यज्ञ उत्सव में, अब तुम्हारा पापा जी के फेस्टिवल था और मुझे बुलाए थे, मैं गया था, मैं बैठा था, जैसे तुम्हारे पापा जी आए सब खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ, इतने ही हजार लोग थे, 1000 लोग बैठे थे सभा में, सब खड़े हुए, धड़ 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 सब खड़े हुए, सार 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 करके हाथ जोड़ करके, मैं भी बैठा था, मैं खड़ा नहीं हुआ। अरे 999 को नजर नहीं आ, मुझे नजर किए और सभा बातिल कर दी। ऐसे गुस्सा हो गए, गाली दिए, मुझे देख करके पूरे प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। सब रिजर्वेशन कर गए थे, बेकार हो गया सब। ब्रह्मा जी बैठे थे, बोले कि हो क्या गया, इतने गुस्सा हो गया दक्ष ने। बोले ससुर साहब इतने तुम्हारा पापा ऐसे गुस्सा हो गए। अरे मेरे से लड़के ये गाली दिए, वो गाली दिए, मुझे अभिशाप दे डाले, इसे बड़े घटना हो गया। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था चुपचाप। सती सुने तो बोले तुम्हारा हो क्या गया, तुम खड़ा क्यों नहीं हो गए, जब पापा आए हैं। ये तो बोले तुम खड़ा हो जाना चाहिए था, सम्मान करना चाहिए थे, ससुर है, सम्मान करना चाहिए। तो शिव जी बोले देवी तुझे तक बोले पता है सम्मान करने का, खड़ा होकर सर सर हाथ जोड़ देने सम्मान हो गया। अरे और भी तरीका होता है सम्मान करने का, यही एक ही तरीका नहीं, तो थर्ड क्लास है, उसमें और बढ़िया बढ़िया उपाय भी होता है सम्मान करने का। तो हम जानते हैं, हम सम्मान किए, भली प्रकार से किए सम्मान, लेकिन उनको समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। जैसे कोई इंग्लिश में बोल दे और जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता, बोला पता गाली दिया बोला मैं मेरी भाषा मेरे तरीका सम्मान किया, उनको समझ में नहीं आया मेरा क्या दोष है बताओ मेरा दोष क्या है, मैं तो सम्मान किया था, भली प्रकार से किया था, उनको समझ में नहीं आया, ओहो मुझे उल्टी गाली दी, इसलिए मैं बोला चलो ना समझ है गाली दे रहे हैं, मैं तो कुछ किया नहीं, चुपचाप रहा। लेकिन चुप रहा तो उल्टी ज्यादा गुस्सा हुआ है ना। नहीं आप जिसको गाली दे रहे हैं किसी कारण से, वो हंस दे चुप रह जाए तो आपका गुस्सा और बढ़ेगा। बोले डोज काम नहीं करा यार, हाई डोज देना पड़ेगा तो इससे ज्यादा गुस्सा हुए, तो इस कारण से इससे अभिशाप वगैरह हो गया था, इस कारण से यज्ञ कर मुझे नहीं बुला रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, समझा कर विदा कर दे। आ गए मन दुख करके, अरे इतने बड़े फिसल, लेकिन वो लोग भीड़ ट्रैफिक जाम ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि कितना महिमा प्रसाद का, कैसा मेला लगा है, कैसे लोग सब आए हैं, नाना देश से लोग आए हैं। सती समझती मेरे सारे बहने आए होंगे, सारे जीजाजी आए होंगे, और मम्मी कैसे होंगी, क्या होंगे घर से, अपना अपना घर की बात, घर की होता ना, हाँ तो बेटी है उनके घर की, तो बहुत याद आ रहा, तो संभाल नहीं पाया, फिर वापस गया। बोले छोड़िए ना, जो हो गया, चलना चाहिए, मैं तो नहीं जा पाऊं ना, मुझे बोल दीजिए मैं जाऊं, आप नहीं है तो मैं जाऊं। आप शिव जी ने समझा है, लेकिन वो भी समझ गई वो जाएगी वो हट कर लियो तो जाएगी। आकर के गाली देकर बोला, बोला आप मुझे जब से आपका हाथ पकड़कर शादी करके आई हूं आपके पास, एक दिन कोई साड़ी फाड़ी तो खरीदने को मार्केट भी नहीं गई, हाँ मार्केट होता ही नहीं, जंगल के अंदर बैठे हैं अपने, कई एक दिन कई एक कोई अलंकार कोई वस्त्र कुछ खरीदे, अरे खरीदे नहीं, मैं जो पहनकर आई थी उसको पहनने के लिए चांस मेरे पास नहीं है, किसी पहनू, कोई है ही नहीं, जंगल के जीव जंतु उनके सामने क्या बढ़िया साड़ी जो पहनू, ये तो ऐसी सूटकेस में रखा हुआ है, सो सात सामान पहन कर शादी के बाद आई थी वो ऐसी रखी, एक दिन पहनने के लिए चांस नहीं मिला मुझे, अरे एक दिन कब से पहन तो लू, जाऊं ऐसे बड़े मेला उत्सव में जाऊं तो पहनकर जाऊं, सदे को देखेंगे, आपके मन नहीं कर रहा है, मैं आपके पत्नी हूं, थोड़े एक दे अच्छे शर्ट पहन के जाऊं। शिव जी बोले तुम आनेगी नहीं तो जाएगी, और दुम दुम होकर चली गई गुस्से में, और जाकर फटाफट अपने सब पेटारी खोल करके बक्सा खोल कर जो साड़ी पड़ी पहन ली, पहनकर चल पड़ी अकल पैदल में, उनका गाड़ी थी सिरा वाली है ना, गाड़ी भी नहीं ली, इतने गुस्सा थे पैदल में चल पड़ी बाई रोड बिना गाड़ी में। शंकर जी बोले अरे मैडम चली जा रही है, तो ऐसा करो आपने कुछ लोगों को बोले तो उन कुछ अपने गण को बोले जाओ जाओ उनके पीछे जाओ, देखो कुछ गड़बड़ हो तो पीछे उनके कुछ असिस्टेंट लोग चल पड़े शिव जी के, और जाकर के पहुंचे। अब पहुंच करके अब क्या घटना, अब जब गेट में अंदर घुसे पिताजी तो बड़े सीट पर बैठे थे, बिल्कुल मुंह ऐसे निचोड़ ऐसे नाक उठाए ऐसे देखे, सती जी का मूड खराब बिल्कुल, ये क्या कर गया, पिताजी मुझे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, भरी सभा में सारे मजे बहन और जीजाजी माँ और बाकी सारे भद्र लोग सब जेंटलमैन बैठे उनके सामने मेरे से इस प्रकार अपमान किया जाता है मुझे। और यद्यपि उनके बहन उनके माँ दौड़कर आए, बेटी आई है चलो, लेकिन हटो पापा का क्या हो गया, आप जा करके पापा के सामने हो गया तो पिताजी तो शिव जी को सुना, शिव जी के बारे में ऐसे कटु वाक्य कहे, निंदा वाक्य कहे, सती को सहन नहीं हुआ, स्टॉप इट पापा और आगे मत बोलो, मुझे इतने शर्म हो रहा है कि मैं आपके बेटी कहने के लिए मुझे शर्म आता है, मर क्यों नहीं गई जन्म होने से पहले, आपके जैसे निंदुक जो महत का निंदा करते हैं, अरे जो शिव साक्षात नाम ही मंगल है, सर्व मंगलमय स्वरूप है जिनका, जिनके निर्माल्य के बड़े बड़े लोकपाल देवता चाहते हैं, उनको आप निंदा करते हैं। वो सभी के लिए प्रिय है, केवल आप ही ऐसे निंदा करते हैं उनके लिए। ऐसे बड़े महत्पुरुष के निंदा सुनने से जो अपराध होता है, करने वाले की बात छोड़ दो, आप मैं मेरा बात कह रहा हूं, आपका तो क्या गति होगा, आप तो होने वाला है, लेकिन मैं सुन लिया ऐसे महत निंदा, तो इसलिए मुझे तीन काम करना होगा। जो महत निंदा सुन लिया, क्या बोले, अगर शक्ति हो तो शास्त्र के सिद्धांत है, शास्त्र मत है, अगर आपके पास शक्ति है तो ऐसे निंदा अगर सुन लिया, महत निंदा सुन लिया, तो अगर शक्ति है तो जो निंदा कर रहा है उनके जिह्वा को खींच लो, काट लो सामने। अगर ये शक्ति नहीं है, इस प्रकार शक्तिमान ना हो, तो कान में अंगुली डाल करके भाग जाओ यहां से, टिको मत। अगर वो भी नहीं कर पाओगे तब आत्मघात कर डालो, खुद मर जाओ। जैसे कोई कोई खराब वस्तु बिना जाने पेट में चला खा लिया आपने, तो एक ही उपाय है, उल्टी करा देते हैं। कोई बीस पीस खा लिया तो डॉक्टर पास जाओगे, वो उल्टी करा देते हैं, तो निकल जाए तब जाकर के शांति। तो ऐसे में आपके इसे निंदित कलेवर से जो मेरा जन्म हुआ है, मुझे, मैं जाऊंगा घर, मुझे वो पतिदेव ने मुझे आपके नाम लेकर, व्याख्यायिनी, व्याख्या की बेटी, ऐसे बोलेंगे, मैं तो इतने शर्म सहन नहीं कर सकता, इतने लज्जा को, निंदित बात को, तो मैं शरीर रखना नहीं चाहती हूं, आपके ये जो आपके शरीर से उत्पन्न शरीर को रखना नहीं चाहती हूं। तो उन्होंने अपने को आत्मदाह कर डाली, है ना। नहीं, सती जल गई इस प्रकार सिद्धांत बता करके, और जल जाने के बाद में किया हुआ आपको पता है, उनका किया हुआ गला कट गया, वही यज्ञ फील्ड कर उस आसन से खींच करके वीरभद्र आए, उनके गला काटे, और जितने ब्राह्मण के पूछा आदि बैठे थे, किसका दान तोड़े, किसके पूछ उखाड़े, किसके क्या किए, है ना। नहीं, पूरे सभा स्थल को तोड़ मरोड़ करके टट्टी पिशाब कर दिए। ये होते महत निंदा के इमीडिएट इफेक्ट, एक घंटा भी नहीं लगा, रिएक्शन हो गया, इतने बड़े महापरिणाम होता है महत निंदा का। अरे ये महत क्या, ये तो साक्षात भगवत निंदा है, उनका क्या होना चाहिए, और कुछ नहीं हुआ उल्टी भगवत में प्रवेश, ये है महत्तम अद्भुततमम कारणम। उसके बारे में आप ही केवल बता सकते हैं, हे नारद जी आप ही बताए। तो नारद जी अभी 23 नंबर श्लोक में बताएंगे, बड़े लंबा प्रवचन देंगे, ये अद्भुततम कारणम का ये करें, क्या उसका रहस्य है, क्यों ऐसा घटना हुआ, उसको खोल करके नारद जी ने बताएंगे। अभी आप लोग सब सुनेंगे। हरे कृष्ण।